الحمد لله وصفا وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 پڑھ رہے ہیں اس کلاس کے اندر، بارد القرآن کی جلد نمبر 3 سے، اور 51 نمبر پیج کے اوپر ہم تھے پچھلی کلاس میں. ساری ڈسکشن ابھی بھی وہی ذبیحہ، اہل کتاب کے ذبیحہ کے بارے میں چل رہی ہے. تو اس میں ہم نے امام قرطبی رحمتہ اللہ علیہ کا یہ قول پڑھ لیا تھا کہ جس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر یہ پیج نمبر 51 سے ہی خالی یہ پڑھ لیں کہ اگرچہ قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ کافر کی نماز اور عبادتوں کی طرح اس کا عمل ذبح بھی قبول نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، یعنی جس طرح سے دین اسلام کے اندر یہ بات اسٹیبلشڈ ہے کہ یعنی یہ بالکل ہی بدیہی بات ہے، ظاہری بات ہے، کلیئر بات ہے کہ جب تک کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا، جب تک کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان ہونے کا مطلب کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور رسول نہیں تسلیم کرتا. ٹھیک ہے، جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے اوپر اور ختم رسالت، ختم نبوت کے اوپر جب تک ایمان نہیں لاتا، اس کا اقرار نہیں کرتا، اس کی تصدیق نہیں کرتا، تو وہ مسلمان نہیں ہے. تو اگر اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق نہیں کری تو اب وہ جو بھی نئے کام کرے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ نمازیں پڑھے، وہ صدقہ خیرات کرے، قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ مکہ مکرمہ پہنچ جائے کسی طریقے سے، حج کر لے، وہاں پہ جا کر کے عمرہ کر لے، قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کر لینا تو وہ کر سکتا ہے جا کر کے، آج کل تو کون روکنے والا ہے، لیکن قبولیت اس کی نہیں ہے. تو عبادت کے کام جو ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے کام ہوتے ہیں نا، آپ کسی کو نقصان تو نہیں پہنچاتے ہیں نا عبادت کر کے. یو ڈونٹ ہرٹ اینی ون بائی ڈوئنگ یور طواف، بائی ڈوئنگ یور مطلب آج کل تو خیر ٹھوڈے وڈے مار دیتے ہیں، لیکن ویسے تو نہیں طواف میں کسی کو ہرٹ کرتے. نمازیں پڑھتے ہیں آپ کسی کو ہرٹ تو نہیں کرتے نا. ٹھیک ہے، صدقہ خیرات کرتے ہیں تو ہرٹ تو نہیں کرتے آپ کسی کو، آپ تو لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کے یہاں چونکہ آپ نے وہ شرط ایمان کی پوری نہیں کری، تو اب کوئی بھی چیز چاہے کتنی اچھی کیوں نہ ہو وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، دس از دا بیسک موسٹ بیسک فنڈامنٹل آف آور دین. ٹھیک ہے، تو بہت ہی اچھے کام ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے جس طرح عبادتیں، نماز یہ قبول نہیں ہے، تو اسی طریقے سے جو ذبیحہ کا عمل ہے، اب ذبیحہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی اگر ہم اس نظر سے دیکھیں جس کو کہ آج جو ہے وہ سائنس نے بھی پروف کیا ہے اور جو ہے وہ دین تو پہلے سے ہی پروون ہے کہ ذبیحہ از ایکچولی کیا، واٹ از اٹ، واٹ از ذبیحہ؟ ذبیحہ از اے ایکٹ آف مرسی ٹو دی اینیمل. ٹھیک ہے نا، یہ جانور کو دنیا اس جہان سے دوسری جہان پہنچانے کا مرسیفل طریقہ ہے. ٹھیک ہے، تو بھائی بینگ مرسیفل تو بہت ہی نیکی کا کام ہے نا. صحیح ہے، تو جس طرح سے نماز نیکی کا کام ہے، آپ کسی کو ہرٹ نہیں کرتے، دوسری عبادتیں نیکی کا کام ہوتی ہیں، آپ کسی کو ہرٹ نہیں کرتے، اسی طریقے سے ذبیحہ جو ہے یہ بھی نیکی کا کام ہے کیونکہ آپ کسی کو ہرٹ نہیں کرتے، یعنی جانور کو بھی ہرٹ نہیں کرتے. لیکن कबूलियत जो है वो जबीहा की भी नहीं है। ठीक है, ये है हमारा दीन। सही है, तो अब कयास क्या था, यानी अकल, अकल क्या कह रही थी कि भाई ये अच्छे काम है, इनको कबूल हो जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से नमाज और इबादतें कबूल नहीं है, तो अब इसके ऊपर कयास करते हुए क्या होना चाहिए था। ठीक है, यानी एक तो कयास हो गया ना कि अच्छे काम है तो कबूल होना चाहिए, ये तो एक कयास हो गया। दूसरा कयास या दूसरी लॉजिकल इन्फ्रेंस क्या हुई कि भाई अगर नमाज और दूसरी इबादतें कबूल नहीं है तो ज़बीहा भी कबूल नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पर कबूलियत का मानी एक तो ये लिया गया कि ज़बीहा हलाल है, ज़बीहा मुसलमान के लिए हलाल है, अगरचे कि अहले किताब ने किया है लेकिन वो मुसलमान के लिए हलाल। ठीक है, तो ये खिलाफ कयास बात हो गई कि जिस तरह नमाज और दूसरी इबादतों को रद्द कर दिया जाएगा, उनके ज़बीहा को रद्द नहीं किया जाएगा, उनके ज़बीहा को रद्द नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जन्नत में उनको ज़बीहा की वजह से दाखिल कर दिया जाएगा, नहीं, बल्कि उनके ज़बीहा को दुनिया के अंदर मुसलमान रद्द नहीं करेंगे, बल्कि उसको कबूल करके खा लेंगे। ठीक है, इतनी सारी तफसील मैंने क्यों बयान करी है, सारी ये समझाने के लिए कि हमारी अकल जो लॉजिकल रीजनिंग करती है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की का जो हुक्म है वो उसके ऊपर गालिब होता है। ठीक है, वो उसके ऊपर गालिब होता है, वो हमारी अकल में आ रहा है, वेरी गुड, अच्छी बात है, हमें समझ में आ गया अल्लाह का हुक्म। और अगर नहीं आ रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी अकल को स्विच ऑफ करेंगे उस टाइम पर और अल्लाह के हुक्म को जो है वो अडॉप्ट करेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे। ये है हमारा दीन। ठीक है, तो अब जो है वो आजकल तो फिर जाहिर है फितने और फितने और फितने, बहुत ज्यादा फितने, तो हम अब जिस दौर में रह रहे हैं तो हमें अपने दौर से भी तो थोड़ी अवेयरनेस, थोड़ी तो क्या, बहुत ज्यादा अवेयरनेस होने की जरूरत है। तो आजकल क्या फितना चल रहा है कि काफिर के हर चीज को कबूल करवाने की तरफ मेहनत चल रही है, कि काफिर की हर चीज कबूल है। ठीक है, तो इसी वजह से कोई नॉन मुस्लिम होता है, वो मरता है तो बाकायदा रहमतुल्ला उसके ऊपर कहा जाता है, शहीद कहा जाता है, ठीक है ना, रेस्ट इन पीस कहा जाता है, RIP, रिप। पहले तो मैं सोचता है रिप अपार्ट क्यों भाई, रिप क्यों बोल रहे हैं, बाद में पता चला कि रिप का मतलब होता है रेस्ट इन पीस, यानी आप जो है वो काफिर को रेस्ट इन पीस करार दे रहे हैं। और कुरान मजीद क्या कह रहा है, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफार। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत जिन्होंने उस काफिर को बनाया, जिन्होंने उस काफिर को खिलाया, जिन्होंने उस काफिर को सस्टेन किया, जो उस काफिर का रब है, वो क्या कह रहे हैं कुरान मजीद में कि बेशक वो जिन्होंने कुफर किया, क्या मतलब कि वो जिन्होंने मेरे नबी की रिसालत का इनकार कर दिया, तो वो लोग वह मातू और वो मर गए, यानी इस हालत में मर गए जिस हालत में उन्होंने नबी अलैहि सलाम का इनकार किया था, वह हम कुफारुन और वो इस हालत में मर गए कि वो काफिर ही थे, यानी नबी अलैहि सलाम का उन्होंने इकरार नहीं किया, काफिर ही थे, इसी हालत में मर गए। उलाइका अलैहिम, उनके ऊपर है लानतुल्लाही, अल्लाह की लानत, वल मलाइकती और उसके मलाइका की लानत, वन्नास अजमाई और सारे इंसानों की लानत। ठीक है, कुरान मजीद फुरकान हमीद क्या फरमाता है सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 161 एंड 162। ठीक है, कि जो कुफर की हालत में मर गया तो उसके ऊपर अल्लाह की लानत, उसके ऊपर अल्लाह के फरिश्तों की लानत और तमाम इंसानों की लानत। अच्छा, क्या काफिर भी उनके ऊपर लानत करते हैं, उनमें से एक मर गया तो वो भी उसके ऊपर लानत करते हैं? नहीं, वो अपनी जुबान से लानत नहीं करते, उनके दिल लानत करते हैं, उनके दिल लानत करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया ना वन्नास अजमाइन, यानी सब इंसान लानत करते हैं, तो फिर वो तो जुबान से तो लानत नहीं करते, तो इसको फिर हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि उनके दिल लानत करते हैं, क्योंकि दिल जो होता है ना वो इंसान के कंट्रोल में नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कि जो कुछ है वह इन इमिन क्या है वो इमिन शय इन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, कि कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि अल्लाह ताला की तस्बीह ना करती हो, कोई चीज ऐसी नहीं है जो अल्लाह की तस्बीह ना करती हो, तो भाई हम तो नहीं करते, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता तस्बीह करने का, और काफिर तो इनकार करते हैं, नहीं हम क्यों तस्बीह करें भाई। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो अल्लाह की तस्बीह ना करती हो। तो फिर ये जो काफिर इतने सारे आ गए और जो गाफिल मुसलमान हो गए वो तो तस्बीह नहीं करते, तो क्या तदबीक है इसकी कि वो जुबान से तस्बीह नहीं करते, अपने इख्तियार से तस्बीह नहीं करते, लेकिन हर शय जो उनकी बॉडी के अंदर है, ईच एंड एवरी बॉडी सेल, ईच एंड एवरी ऑर्गन इन देयर बॉडी, दे डू तस्बीह, वो तस्बीह करती है। ठीक है, तो जिस तरह अल्लाह की तस्बीह हमारा जिस्म करता है चाहे हमारी जुबान ना करे, यानी हम अपनी अकल से इख्तियारी तौर पर तस्बीह ना करें लेकिन फिर भी जुबान के सेल्स तस्बीह कर रहे होते हैं, जुबान के सेल्स तस्बीह कर रहे होते हैं। उसी तरीके से काफिर के ऊपर सारी दुनिया के इंसान लानत कर रहे होते हैं, लेकिन काफिरों की जुबानी लानत नहीं कर रही होती, उनके दिल लानत कर रहे होते हैं, और मुसलमानों की जुबानी भी लानत कर रही होती है काफिर के ऊपर जो कुफर की हालत में मर जाए। ठीक है, जो कुफर की हालत में मर जाए, तो जिसका आपको पता है कि वो कुफर की हालत में मर गया, जैसे अबू जहल का पता है, फिरौन का पता है, हमान का पता है, नमरूद का पता है, ठीक है, और जो भी इस किस्म के वेल नोन किस्म के काफिर हैं, तो उनके ऊपर तो लानत करने की इजाजत भी है, लेकिन बाकी जो काफिर हैं जिनका हमें पता नहीं कि उन्होंने मौत के वक्त कलमा नहीं पढ़ा या पढ़ा, तो उनके ऊपर लानत करने की कोई जरूरत नहीं है, इजाजत ही नहीं और जरूरत ही कोई नहीं उनके ऊपर लानत करने की, बल्कि इजाजत ही नहीं, उनके ऊपर लानत करने की इजाजत ही नहीं। लेकिन भाई लानत करने की इजाजत नहीं है लेकिन उनको रहमतुल्ला अलैह कहने की कहां से इजाजत हो गई भाई? रहमतुल्लाह अलैह आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं? क्या आपको पता है कि वो मुसलमान हो गए थे अच्छा गुमान रखते हुए? तो भाई दीन को जो है वो चेंज करने की क्या जरूरत है? एक शख्स जो के वेल नोन काफिर था मरा के हालत में तो पता ही नहीं है ना किसी को, अब उसको खाम खाम जो है ना रहमतुल्लाह अलैह और रेस्ट इन पीस और पता नहीं और शहीद और क्या क्या उठा करके आज कहना शुरू कर दिया। उम्मत ने पहले तो कभी भी ऐसा काम नहीं किया, आज क्यों इस तरह का काम हो रहा है? क्योंकि मीडिया और तालीमी निजाम के जरिए से आपसे करवाया जा रहा है, पहले किसी ने नहीं किया अब क्यों कर रहे हैं? मीडिया और तालीमी निजाम के जरिए से ये कॉन्सेप्ट जो है वो मुसलमानों के अंदर इनग्रेन किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका तो दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल ये तो हो गई पिछले हफ्ते की एक बात की मजीद तफसील। आगे फरमाते हैं कि खुलासा यह है कि ताम अहले किताब से मुराद इस आयत में बा इत्तेफाक उलमाए तफसीर वो ताम है कि जिसकी हिल्लत मजहब और अकीदे पर मौकूफ है, यानी जमीन। ठीक है, दाल चावल की हिल्लत जो है उसका हलाल होना मजहब और अकीदे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जानवर का हलाल होना मजहब और अकीदे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर सिर्फ उसी की बात हो रही है। इसीलिए इस ताम में अहले किताब के साथ इम्तियाजी मुआमला किया गया क्योंकि वो भी अल्लाह की भेजी हुई किताबों और पैगंबरों पर ईमान के मुद्दई हैं। ठीक है, अब ये जैसे कि पहले बात हो चुकी है कि उलमा का के जिम्मे क्या काम होता है कि जो उन तक दीन का इल्म पहुंचा है उसको आगे ट्रांसफर करना। ठीक है, पहले तो अपने दिमाग में ट्रांसफर करना ना, जिसको कहते हैं इल्म हासिल करना, उलमा का सबसे पहला काम ये होता है इल्म हासिल करना, यानी अपने दिमाग में और अपने जिस्म के ऊपर दीन को लागू करना, ये फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रांसफर हो गया। दूसरा लेवल ऑफ ट्रांसफर दूसरों के दिमागों के अंदर दीन के इल्म को ट्रांसफर करना, ये उलमा का काम होता है, जैसे ऊपर से मिला है वैसे आगे ट्रांसफर करना। दीन की लॉजिक बयान करना ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन इफ दे डू इट इनको बहुत ज्यादा जो है वो इसके ऊपर एक्स्ट्रा अजर मिलता है। ठीक है, हिकमत बयान करना, फलाने हुक्म की क्या हिकमत है, फलाने हुक्म की क्या हिकमत है, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि अगर नहीं बयान करेंगे तो उनको सजा मिलेगी, नहीं, क्योंकि अल्लाह के अहकाम की हिकमत ये तो अभी भी नहीं पता कि बहुत सारे हुक्मों की क्या हिकमत है, तो अगर मौलवी को इसका जिम्मेदार बना दिया जाएगा तो सारे मौलवी फिर इसका मतलब है गुनाहगार हो जाएंगे। क्यों नहीं भाई आपने हिकमत जो है वो बयान करी आगे, भाई पता ही नहीं थी हिकमत क्या है अल्लाह के हुक्म की। ठीक है, तो हिकमत बयान करना ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो कि उलमा की तरफ से हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिलता है, और अल्लाह उनको बेहतरीन जजाए ठहर रहे हमारी तरफ से। तो यहाँ पर जो है ना वो फिर वो हिकमत बयान कर रहे हैं कि भाई अब कोशिश करी कि यहाँ पे क्या इसकी हिकमत हो सकती है, वो समझ में आ गया, अल्लाह ताला ने दिन में डाल दी आगे बयान कर दिया। फरमाते हैं कि जी तमाम में अहले किताब के साथ इम्तियाजी मामला किया गया, क्योंकि वो क्योंकि ये क्योंकि जो है ना ये रीजनिंग है, वो भी अल्लाह की भेजी हुई किताबों और पैगंबरों पर ईमान के मुद्दई हैं, दावा तो करते हैं ना भाई, अगरचे उनकी तहरीफात ने उनके दावे को मजरूह कर दिया, जख्मी कर दिया उनके दावे को। तहरीफ जो उन्होंने करी है, हमारे यहां भी तो बहुत सारी तहरीफें करी हुई हैं, उस दर्जे की तहरीफ नहीं करी हुई जिस दर्जे की जो है वो अहले किताब ने करी है, लेकिन तहरीफ तो की हुई है ना बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजों, ठीक है, तो जख्मी के दीन को जो जख्मी किया है तो उसके भी दर्जे होता है ना, एक होता है बिल्कुल आपने अधमुआ कर दिया जख्मी कर करके किसी को, और एक होता है आपने इतना जख्मी कर दिया कि थोड़ा बहुत खून निकल गया उसका, यही फर्क है हमारी तहरीफात में और हमारे मजरूह करने में, और उनके तहरीफात और उनके मजरूह करने में यही फर्क है, ठीक है। यहां तक कि शिर्क कुफर में मुबतला हो गए बखिलाफ बुत परस्त मुशरिकीन के, कि वो किसी आसमानी किताब या नबी या रसूल पर ईमान लाने का दावा भी नहीं रखते, ठीक है, यानी वो आसमानी किताब, वो नबी, वो रसूल जो कि कुरान हदीस से साबित, उसके ऊपर ईमान लाने का वो दावा नहीं रख करते। हिंदू, बुद्ध मत, वो बुधा के ऊपर ईमान लाने का दावा करते हैं, लेकिन बुधा का जिक्र जो है वो ना कुरान मजीद के अंदर है ना हदीस मुबारका के अंदर, ठीक है, कहते हैं कि अभी कोई था जो भी हम, तो हम तो उसको नहीं तस्लीम कर सकते, होगा लेकिन उसका जबिया तो नहीं हम कह सकते अपनी तरफ से कह के। और जिन किताबों या शख्सियतों पर उनका ईमान है वो ना अल्लाह की भेजी हुई किताबें हैं और ना उनका रसूल और नबी होना अल्लाह के किसी कलाम से साबित है, यानी ना वही मतलू से साबित है जिसको कुरान कहते हैं, वली वही मतलू इज इक्वल टू कुरान, और हदीस क्या है वही गैर मतलू, तो ना वही मतलू से साबित है ना वही गैर मतलू से साबित है, तो इस वजह से उनका जबीहा जो है, चाहे वो जबीहा करें चाहे वो कुछ भी करें, वो हमारे लिए हलाल नहीं है। अच्छा, अब अहले किताब का ज़बीहा हलाल होने की हिकमत और वजह, अब ये हिकमत जो है वो मजीद बाकायदा हेडलाइन बना करके आगे बयान फरमा रहे हैं, ये ज़ेरे बहस मसले का ये तीसरा सवाल है, इसका जवाब अक्सर सहाबा व ताबईन और मैं तफसीर की तरफ से ये है कि तमाम कुफार में से अहले किताब यहूद व नसारा का ज़बीहा और उनकी औरतों से निकाह हलाल करार देने की वजह ये है कि उनके दीन में सैकड़ों तहरीफात होने के बावजूद इन दो मसलों में उनका मजहब भी इस्लाम के बिल्कुल मुताबिक है, ठीक है। अब ये हिकमत एक एडिशनल चीज है, ठीक है, एडिशनल चीज है कि भाई इसकी वजह क्या है, क्योंकि उनका मजहब और हमारे मजहब में इन मामला के अंदर ज्यादा फर्क नहीं है या प्रीटी मच सेम ही है, यानी वो जबीहा पर अल्लाह का नाम लेना अकीदतन जरूरी समझते हैं, इसके बगैर जानवर को मुर्दार, मेता मेता और नापाक को हराम करार देते हैं, ठीक है, प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियंस और प्रैक्टिसिंग ज्यूस, ठीक है, तो वो उनके यहाँ आप जाके उन्होंने प्रैक्टिसिंग क्यों उनको कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी नॉलेज को जो है ना वो प्रिजर्व करके रखा हुआ है, ठीक है, तो ज्यूस के अंदर तो बहुत वेल नोन भी है ये कोशर, और जो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियंस होते हैं वो दुनिया के अंदर बहुत सारे मकामात हैं जिनके अंदर प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियंस रहते हैं, हम तो चूंकि जॉब के लिए जाते हैं ना अमेरिका और यूरोप, ठीक है, हम तो चूंकि ज्यादातर पाकिस्तान इंडिया वगैरह से जो जाते हैं वो हम जॉब के लिए जाते हैं ना, टेक्नोलॉजी और साइंस और टेक्नो और इन सब चीजों के लिए जाते हैं, तो हमारा एक्सपोजर जो है ना वो सारे अमरीकियों से नहीं होता, सारे यूरोपियन से नहीं होता, ज्यादातर वेस्टर्न यूरोप के जो दीन को छोड़े वाले गोरे होते हैं ना हमारा उनसे एक्सपोजर होता है, या अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क, शिकागो और कैलिफोर्निया और इस तरह के बड़े शहरों के अंदर जो गोरे रहते हैं उनसे हमारा एक्सपोजर होता है, तो भाई उनमें तो बहुत सारे जो है ना वो ऐसे हैं कि जो कि दीन को खैरबाद कह चुके हैं अपने, ठीक है, जबी तो वहां के जो वोटिंग होती है ना वो ज्यादातर डेमोक्रेट्स के हक में होती है, क्योंकि डेमोक्रेट्स जो हैं अमेरिका के अंदर ये लिबरल्स हैं, ठीक है, तो जितने बड़े बड़े शहर हैं ना न्यूयॉर्क वगैरह तो सारे ये सारी के सारे ब्लू स्टेट्स कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां के लोग जो है वो लिबरल किस्म के लोग हैं, और जो रेड स्टेट्स हैं यानी जहां से रिपब्लिकन्स को वोट मिलता है वो क्रिश्चियन कंजर्वेटिव स्टेट्स होती हैं, वहां पे आप जाएं, लेकिन वहां पे हम क्यों जाएं भाई, हम तो जाते नहीं वहां पे, क्योंकि हम तो जाते हैं कंप्यूटर साइंस की जॉब करने के लिए ज्यादातर ना, इंजीनियरिंग की जॉब करने के लिए, बाकी कुछ डॉक्टर्स वगैरह होते हैं शुरू में जो जाते हैं बेचारे, उनको जो है वो पाकिस्तानी डॉक्टर होते हैं, यूएस में लेकर के अमेरिका पहुंच जाते हैं, तो उनको बिल्कुल दूर आबाद कहीं पे जाना, वो जहाँ पे कोई गोरा जाने के लिए तैयार नहीं होता वहां पे उनको जॉब मिलती है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते करते बड़े शहरों में मुंतकिल होते हैं, तो उनका थोड़ा बहुत एक्सपोजर होता होगा ऐसी हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चंस के साथ। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्थोडॉक्स ज्यूज जो हैं वो बस ज़बीहा करते हैं, बल्कि क्रिश्चियंस के अंदर भी ज़बीहा करने वाले बहुत सारे लोग मौजूद हैं। इसी तरह मसला निकाह में, जिन औरतों से इस्लाम में निकाह हराम है उनके मजहब में भी हराम है, और जिस तरह इस्लाम में निकाह का ऐलान और गवाहों के सामने होना जरूरी है, इसी तरह उनके मौजूदा मजहब में भी यही अहकाम, यानी जो चर्च वेडिंग होती है तो उसके अंदर जो है वो मुझे अल्फाज नहीं याद, जो वाउज एक्सचेंज होते हैं सबके सामने, और जो है वो एक्सेप्ट करते हैं हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को, ठीक है, तो वही तो हमारे यहाँ भी ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो निकाह की शर्त तो यही होती है ना, आप सबके सामने गवाहों के सामने हो और जो है वो कबूलियत हो दोनों तरफ से, बस। तो ये चीज जो है वो उनके और हमारे मजहब के दरमियान सेम है या सिमिलर है कम अज कम। इमाम तफसीर इब्न कसीर ने यही कौल अक्सर सहाबा व ताबईन का नकल फरमाया है, तो उनकी इबारत में ये है, उनकी इबारत ये है इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह की, उसका तर्जुमा पढ़ लेते हैं कि इब्न अब्बास, अबू उमामा, मुजाहिद और सईद बिन जुबैर, अकरमा, अता, हसन, मकहूल, इब्राहिम नखई, सुदई और मुकातिल बिन हयान रहिमहुमुल्लाहु तआला अजमईन ने तमाम अहले किताब की तफसीर उनके जबाइह के साथ की है, ठीक है, यानी उनके उनके जबाइह से इसकी तफसीर की है, तमाम अहले किताब की, दाल चावल से इसकी तफसीर नहीं करी है बल्कि जबाइह से तफसीर करी है। और ये मसला मुसलमानों के लिए यहाँ इजमाई है, ये उनके जबीहे मुसलमानों के लिए हलाल है, ठीक है। अच्छा, इजमाई क्यों, जब कुरान मजीद के अंदर है तो फिर तो हमने पिछली क्लास में ये बात करी थी ना कि कुरान मजीद तो खुद एक सबसे पहला माखज तो कुरान मजीद है अहकाम शरीयत का, इजमा तो तीसरे नंबर पर आता है, पहला कुरान है फिर हदीस है फिर इजमा, तो यहाँ पे फरमा रहे हैं कि ये मसला इजमाई है, ठीक है, ऐसा क्यों भाई, ये मसला तो कुरानी मसला है, इजमाई मसला कैसे बन गया, तो वो फिर आगे समझ में आएगा कि इजमाई मसला कैसे बन गया, ठीक है, अभी आ रहा है इंशाल्लाह, उम्मीद है कि आज की क्लास में कवर हो जाएगा, ठीक है। ये मसला क्लियर है सबको कि भाई ये तो पुरानी मसला है, ये इजमाई मसला तो नहीं है, तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि ये इजमाई मसला है, तो उसका हम आगे पढ़ेंगे कि ये मसला मुसलमानों के लिए इजमाई है कि उनके जबीहे मुसलमानों के लिए हलाल हैं, क्योंकि वो गैरुल्लाह के लिए जबह करने को हराम समझते हैं और अपने जबीहों पर खुदा के सिवा और किसी का नाम नहीं लेते हैं, ठीक है, अगरचे वो अल्लाह के बारे में ऐसी बातों के मोतकिद हों जिनसे बारी ताला पाक और बुलंद वाला है, ठीक है, यानी अल्लाह का नाम लेते हैं लेकिन अल्लाह के साथ जो है ना उन्होंने ईसा अलैहि सलाम को शरीक कर दिया, नाऊज़ बिल्ला, मरियम अलैहि सलाम को जो है वो बीवी बना दिया, और यहूदियों ने उज़ैर अलैहि सलाम को बेटा बना दिया, लेकिन अल्लाह का नाम जो है ना वो अपनी लैंग्वेज में लें, अच्छा अल्लाह का नाम जो है वो तो खाली अरब क्रिश्चियन और जूज लेते हैं, बाकी जो यूरोप के अंदर क्रिश्चियन एंड जूज रहते हैं वो तो अल्लाह का नाम तो नहीं लेते, वो तो गॉड का नाम लेते हैं, ठीक है, GOD गॉड, या जो भी लैंग्वेज बोल रहे हैं अगर उसके अंदर गॉड के लिए कोई और लफ्ज है तो वो वाला लफ्ज लेते हैं, ठीक है, लेकिन मकसद क्या हुआ कि जो भी लैंग्वेज के अंदर वो जो भी बोलते हैं ना वो दरअसल खालिक की तरफ ही पॉइंट कर रहा होता है वो लफ्ज, ठीक है ना, खालिक, ये चंद सिफात हैं जो कि सिर्फ अल्लाह के लिए, खालिक, तख्लीक करने वाला और कोई नहीं, ये क्रिश्चियंस का भी इसके ऊपर कोई इख्तिलाफ नहीं है कि तख्लीक किसी और ने कर दिया, ठीक है, तो वो गॉड बोले या ईश्वर बोले या कोई और, मतलब क्रिश्चियन भी अगर कोई वैसे तो ये तो हिंदू जुबान का लफ्ज है ईश्वर, लेकिन ईलिया, क्या लफ्ज है वो, ईलिया तो खुदा के शहर को कहते हैं ना, तो ईला ईला जो है शायद खुदा के लिए लफ्ज है अरामेइक लैंग्वेज के अंदर, वो दलालत वो खुदाई की तरफ कर रहा होता है वो लफ्ज। अच्छा, एलोहिम, इलोहिम, हाँ इलाही, जैसे हमारे इसका ना इलिया, तो इलिया तो कह रहा था, खैर जो भी है। इब्न कसीर के इस बयान में एक तो ये बात मालूम हुई कि तमाम मजकूर सदर हजरात सहाबा व ताबीन के नजदीक तमाम अहले किताब से उनके जबाइह मुराद और उनके हलाल होने पर उम्मत का इजमा है। दूसरी बात ये मालूम हुई कि इन सब हजरात के नजदीक जबाइह अहले किताब के हलाल होने की वजह यह है कि यहूदो नसारे के मजहब में बहुत सी तहरीफात के बावजूद ज़बीहा का मसला इस्लामी शरीयत के मुताबिक बाकी है। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस भी होते हैं, जैसे ऑर्थोडॉक्स ज्यूज होते हैं ना, उसी तरह से क्रिश्चियंस कैथोलिक ये भी बड़े ऑर्थोडॉक्स होते हैं, मतलब ये भी ऑर्थोडॉक्स एक मतलब है ना, बड़े ट्रेडिशनल रिवायती। तो कैथोलिक्स में भी बड़े रिवायती कैथोलिक्स मौजूद हैं, ठीक है, और पूरा एक अलग सेक्ट है जो कि काले कपड़े पहनने वाले ग्रीक ऑर्थोडॉक्स को कहते हैं, ठीक है। रशिया में भी जो है वो उन्हीं का ज्यादा कंट्रोल है, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, तो ये सब जो है वो करते हैं इस तरह के ना, जबिया वगैरह। तो जबिया का मसला इस्लामी शरीयत के मुताबिक बाकी है कि गैरुल्लाह के नाम पर जबह किए हुए जानवर को वो भी हराम कहते हैं, और जबीहा पर अल्लाह का नाम लेना जरूरी समझते हैं, ठीक है। जब जबह करते हैं तो अल्लाह का नाम लेना जरूरी समझते हैं। ये दूसरी बात है कि अल्लाह ताला की शान में वो तसलीस के मुशरिकाना अकीदे के कायल हो गए, ठीक है। ट्रिनिटी तो वो कहा जाता है कि वो सेंट पॉल जो आया था, तो वो था तो असल में यहूदी, लेकिन ऊपर से वो मुसलमान, वो ईसाई अपने आप को प्रेजेंट करता था, और उसने आकर के फिर सारा जो है ना वो इनका उल्टा सीधा कर दिया मामला। जिस तरह हमारे यहाँ जो है वो अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी, वो मुसलमान बन के आया और उसने जो है वो रवाफिस का एक फिरका बनाया, उसी तरह से वहां पर वो ईसाई बन के आया सेंट पॉल यहूदी, और उसने आकर के इनके जो है वो, लेकिन चूंकि उनकी दीन के अंदर हिफाजत वाला ऐसा मामला नहीं था, तो इस वजह से तकरीबन सारे ही बिगड़ गए, इल्ला माशाअल्लाह सारे ही बिगड़ गए। और हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून केम इन टू इफेक्ट, और बस थोड़े से बिगड़ सके, सारे नहीं बिगड़ सके। अल्लाह और मसीह इब्ने मरियम को एक ही कहने लगे, जिसका कुरान करीम ने इन अल्फाज में जिक्र फरमाया है, लकद कफर अल्लज़ीना कालू इन्ना अल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम। ये तहकीक के कुफर किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह ताला वो तो मसीह इब्न मरियम है, नऊज़ बिल्लाह, ठीक है। तो अब इसका हासिल ये हुआ, यानी कंक्लूजन ये निकला कि ज़बीहा के मुताल्लिक तमाम कुरानी आयात जो सूरह बकरा और सूरह अनआम में आई है, जिनमें गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किए हुए जानवर को भी और उस जानवर को भी जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया हराम करार दिया है, ठीक है। अभी तो हम सूरह मायदा की एक आयत पढ़ रहे हैं ना, लेकिन ज़बीहा का मसला जो है ये सूरह बकरा और सूरह अनआम की आयत में भी जिक्र है, और वहां पर जो है अल्लाह के नाम के अलावा किसी नाम पे ज़बह किया गया हो तो उसको भी, और जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया उसको भी हराम करार दिया है। ये सब आयतें अपनी जगह पर मुहकम और मामूल बिहा हैं, ठीक है, मुहकम और मामूल बिहा। यानी मुहकम जो होता है ना, ये आयत का तो कुरानी दलील का वो मुकाम होता है जिसके अंदर किसी किस्म का कोई नस का इहतमाल ना हो, किसी दूसरे मानी का इहतमाल ना हो, बस जैसी है वैसी ही उसका मतलब, ठीक है, तो इसको मुहकम कहा जाता है। अच्छा क्या लिखा है आपने, इफ दे मेंशन एनी गैरुल्लाह एट द टाइम ऑफ सेक्रीफाइस देन देयर ज़बीहा वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। उफ तकी उस्मानी साहब हैज रेफर्ड टू दिस एज अ रीजन टू अवॉइड देयर मीट। इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, अभी ठहर जाए ना, पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह, इतना टाइम रह गया अच्छी क्लास में। यही तो हम आपको कहना समझाना चाह रहे थे कि भाई ये क्यों कह रहे हैं कि ये इजमाही मसला है, हालांकि ये तो पुरानी मसला है, सूरह मायदा की आयत के अंदर आ गया भाई अहले किताब का ज़बीहा हलाल है। तो अब जो है वो इजमाई मसला तो उस वक्त होता है ना जबकि कुरान की कोई चीज से जो है वो बात क्लियर ना हो रही हो, तब जो है वो उलमा का इजमा होता है उसके ऊपर। तो थोड़ा सा सब्र करें, उन्होंने हम करना भी शुरू कर दिया आपके बात के ऊपर। सही, अभी पढ़ते हैं। तो कहते हैं कि इसका हासिल ये हुआ कि ज़बीहा के मुताले तमाम पुरानी आयात जो सूरह बकरा सूरह अनआम में आई है, जिनमें गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किए हुए जानवर को भी और इस जानवर को भी जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया हराम करार दिया है, ये सब आयतें अपनी जगह पर मुहकम और मामूल बिहा हैं, ठीक है। यानी ऐसी नहीं है कि जिनके अंदर जो है वो कोई दूसरे वूसरे मानी निकाले जा सकते हो, बिल्कुल मुहकम आयात है। सूरह मायदा की आयत जिसमें ताम अहले किताब को हलाल करार दिया है वो भी इन आयात के हुक्म से मुख्तलिफ नहीं है, वो भी मुहकम आयत है, क्योंकि ताम अहले किताब को हलाल करार देने की वजह यही है, वजह ही ये है कि उनके मौजूदा मजहब में भी गैरुल्लाह के नाम पर जबह किया हुआ जानवर और वो जानवर जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया हराम है, उनके मौजूदा मजहब में भी गैरुल्लाह के नाम पर जबह किया हुआ जानवर वो जानवर जिन पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया हराम है। मौजूदा जमाने में जो तौर में तौरात व इंजील के जो नुस्खे अब भी मौजूद हैं उनमें भी जबीहा और निकाह के अहकाम तकरीबन वही हैं जो कुरान करीम और इस्लाम में है, जिनकी तफसील अनकरीब जिक्र की जाएगी। आगे बाकायदा हजरत ने कोट किया हुआ है कि बाइबल्स को। हाँ ये हो सकता है कि बाज जाहिल अवाम अपने मजहब के इस हुक्म के खिलाफ कुछ अमल करते हों, जाहिल अवाम यानी जिनको अपने दीन के अहकाम का पता नहीं, ठीक है, जैसा कि खुद मुसलमानों के जाहिल अवाम में भी बहुत सी जाहिलाना रस्में शामिल हो गई हैं, मगर उनको मजहब इस्लाम तो नहीं कहा जा सकता ना, ठीक है, जाहिलाना रस्में कैसी कैसी जो है वो मुसलमानों में रसूम और बिदात और खराफात और क्या क्या नहीं मुसलमानों में दाखिल हो गई, लेकिन आप उन चीजों को इस्लाम तो नहीं कह सकते, अगर आपने उनको इस्लाम कहना शुरू कर दिया तो यही तो बिदत कहलाती है, और यही बिदत जो है वो फिर जब और ज्यादा बाहर निकल जाती है तो फिर ये जो है वो बाकायदा इल्हाद वगैरह की भी शक्ल इख्तियार कर सकती है, ठीक है। तो जाहिल अवाम, जाहिल किसको कहते हैं, कुदरतन जुम्मे के दर्स के अंदर इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात हुई है कि जाहिल उसको कहते हैं जिसको इल्म ही ना हो, ठीक है, जुहल जुहल, ठीक है, और जाहिलाना फेल ये एक अलग चीज होती है, जाहिलाना फेल का मतलब ये नहीं होता कि इल्म ही नहीं था तो जो अमल किया उसको जाहिलाना फेल, नहीं, वो जाहिलाना फेल एक अलग चीज होती है, इल्म के बावजूद कोई गलत काम करे तो उसके फेल को जाहिलाना फेल कहते हैं, लेकिन जाहिल उस शख्स को कहते हैं जिसको पता ही नहीं यानी जिसने इल्म हासिल किया ही नहीं, ठीक है, इग्नोरेंट जिसको के अंग्रेजी में इसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो भाई उनके पास जाहिल अवाम अपने मजहब के इसके खिलाफ इस हुक्म के खिलाफ कुछ करते हो तो ये हो सकता है, जिस तरह मुसलमानों में भी ऐसे बहुत सारे जाहिल यानी हम जैसे जो कि माशाल्लाह साइंस टेक्नोलॉजी में तो हमने PhD किया हुआ होता है लेकिन हमें दीन के बुनियादी अहकाम का नहीं पता होता। नसारा के जाहिल अवाम के तर्ज अमल को देखकर ही बास हजरात ताबेईन ने ये फरमाया, यहां से शुरू होती है वो इजमाई वाली बात कि नसारा के जाहिल अवाम के तर्ज अमल को देखकर ही बास हजरात ताबेईन ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने ताम अहले किताब को हलाल करार दिया और अल्लाह ताला जानता है कि वो अपने जबाइह के साथ क्या मुआमला करते हैं, कोई उस पर मसीह या उजैर अलैहिस्सलाम का नाम लेता है, कोई बगैर तस्मिया के ज़बह करता है यानी बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम के साथ वो कहे बगैर ज़बह कर देता है, ठीक है, तो मालूम हुआ कि आयत माईदा जिसमें ताम अहले किताब को हलाल करार दिया है इस आयत ने अहले किताब के ज़बाइह के हक में सूरह बकरा और सूरह अनआम की उन आयतों में तख्सीस या एक किस्म का नस्ख करार दिया है जिसमें गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह करने को या बेगैरुल्लाह के नाम के ज़बह करने को हराम करार दिया। अब मसला ये है कि ये है तो मारुफुल कुरान की इबारत लेकिन इसको समझना जो है ना वो उसके लिए कुछ कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड की जरूरत है, ठीक है, या ये कि बहुत ही ज्यादा फुल फोकस हो करके हम इस वाले पैराग्राफ को समझें, ठीक है, तो कोशिश हमारी यही है कि हम समझाने की कोशिश करें इसको। तो भाई जो रूल बयान किया ना सूरह बकरा और सूरह अनआम की आयतों में वो क्या है कि जिस भी जानवर के ऊपर अल्लाह के अलावा किसी का नाम लिया गया यानी वन गॉड के अलावा किसी दूसरे का नाम लिया गया हो, सच एज ईसा अलैहि सलाम का नाम लिया गया, सच एज उजैर अलैहि सलाम का नाम लिया गया, तो फिर वो हलाल नहीं है। ये सूरह बकरा और सूरह अनाम की आयतों के अंदर ऐसे, ठीक है, या जिसके ऊपर जो है वो जानबूझ करके कोई नाम ना लिया गया हो। नहीं, लेना है मुझे अल्लाह का नाम, ठीक है, ईसा अलैहिस्सलाम और जैन अलैहिस्सलाम का नाम नहीं लिया, लेकिन किसी का भी नाम नहीं लेना, वो भी हराम है, ठीक है। तो सूरह बकरा और सूरह अनाम की आयात ये कह रही है, और सूरह माईदा की आयत नंबर 5 वो क्या कह रही है, अहले किताब का जबिया हलाल है मुसलमानों के लिए, ठीक है। तो भाई अहले किताब के बारे में तो अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि लकद कफर अल्लज़ीन क़ालू इन अल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, कि अल्लाह वही हसीब मसीह इब्न मरियम है, मसीह इब्न मरियम वही अल्लाह है, ठीक है। तो इस वजह से बाज ताबईन, ठीक है, यानी जो सहाबा के बाद वाली जनरेशन है, उनके बारे में फरमा रहे हैं कि उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि चाहे वो किसी का भी नाम लें, ईसा अलैहि सलाम का नाम लें, उज़ैर अलैहि सलाम का नाम लें, या किसी का भी नाम नहीं नाम लें, अगर वो क्रिश्चियन हैं या अगर वो ज्यू हैं तो फिर उनका ज़बिया हलाल होगा, तो फिर उनका ज़बिया हलाल होगा। ये बाज किसने कहा, ये बाज हजरात ताबीन, और बाज जो है ना ये फ्यू के मानी में इस्तेमाल होता है उर्दू जुबान में भी, ठीक है, और अरबी में भी। बाज अकाबिर उदमा के नाम से मालूम होता है कि जिन हजरात ताबईन ने अहले किताब के मतलू को तस्मिया जबीहा, यानी जिसके ऊपर जबीहा, जिसके ऊपर अल्लाह का नाम लेने को तर्क किया गया, उस जबीहा और गैरुल्लाह के नाम पर जबह किए हुए जानवर को हलाल फरमाया है, उनके नजदीक भी अहले किताब का असल मजहब तो इस्लामी अहकाम से मुख्तलिफ नहीं है, मगर उनके जाहिल अवाम ये गलतियां करते हैं। उसके बावजूद उन हजरात ने, यानी उन बाज हजरात ताबेन ने, जाहिल अहले किताब को भी आम अहले किताब के हुक्म से अलग नहीं किया, और जबीहा और निकाह के मामले में उनका भी वही हुक्म रखा जो उनके आबाओ अजदाद और असल मजहब के पैरुओं का है कि उनके जबीहा और उनकी औरतों से निकाह जायज, ठीक है। ये किन की बात हो रही है, बाज अहले किताब, सॉरी बाज ताबीन, ठीक है, कि उन्होंने जाहिल अहले किताब का जो जबीहा था ना और जाहिल अहले किताब की जो औरतें थी, तो उन औरतों को भी हलाल निकाह के लिए रखा मुसलमानों के लिए का फरमाया, और उसी तरीके से वो उनके जबिया को भी जो है वो हलाल फरमाया, ठीक है, और कहा कि उनके औरतों से निकाह जायज है, उनका जबिया भी जो है वो जायज है। इब्ने अरबी ने अहकाम कुरान में लिखा है कि मैंने अपने उस्ताद अबुल फतह मकदसी से सवाल किया कि मौजूदा नसारा तो गैरुल्लाह के नाम पर जबिया करते हैं, मसलन मसीह या उजैर का नाम बवक्ते जबी जबह लेते हैं, तो उनका जबीहा कैसे हलाल हो सकता है, ठीक है। इब्ने अरबी ने अपनी किताब अहमाल, ये इब्ने अरबी कौन से हैं, ये जो कि फकीह इब्ने अरबी, एक तो है ना वो तसव्वुफ वाले इब्ने अरबी, नहीं फकीह इब्ने अरबी जो हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मैंने अपने उस्ताद से पूछा ना, तो उन्होंने फरमाया कि उनका हुक्म अपने आबाओ अजदाद का सा है, आज के अहले किताब का ये हाल अल्लाह को मालूम था, लेकिन अल्लाह ने उनको उनके आबा के ताबे बना दिया। अहकाम इब्ने अरबी जिल्द अव्वल, ठीक है, कि जैसे उनके असलाफ जो इल्म वाले हैं ना, तो वो जैसा मामला करते हैं ना, तो इनको उनके ताबे बना करके इनका भी जो है वो जायज कर दिया। इसका हासिल ये हुआ कि असलाफ उम्मत में जिन हजरात उलमा ने अहले किताब के ऐसे जबायह की इजाजत दी है जिन पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया बल्कि गैरुल्लाह का लिया गया, उनके नजदीक भी असल मजहब अहले किताब का यही है कि ये चीजें उनके मजहब में भी हराम है, मगर इन हजरात ने गलत कार आवाम को भी इस हुक्म में शामिल रखा जो असल अहले किताब का, ठीक है। क्या मतलब कि बाज ताबईन ने और इब्ने अरबी के उस्ताद अबुल फतह मुकद्दसी, जो कि उन बाज ताबईन के ही कौल के ऊपर फतवा देते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि भाई ये जो जाहिल अहले किताब है ना, जो ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पे ज़बह कर देते हैं या उज़ैर अलैहिस्सलाम के नाम पे ज़बह कर देते हैं, ये अपनी जहालत की वजह से करते हैं, लेकिन हम उनको इनके बड़ों के ताबे ही मानेंगे। बड़े कौन होते हैं, इल्म वाले, ठीक है, वो ऐसा नहीं करते, वो अल्लाह के नाम पर ही तौबा करते हैं, इस वजह से इनका इनको भी जो है ना उन्हीं के साथ हम शामिल रखेंगे, इसलिए उनके जबीहा को भी हलाल करार दें। ठीक है, जाहिल अहले किताब के जबीहा को भी हलाल करार दे दिया, जो कि ईसा या उजैर अलैहिस्सलाम का नाम लेकर के ज़बह करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात उम्मीद है कि समझ में आई होगी, नहीं है तो फिर रिकॉर्डिंग में भी इंशाल्लाह मौजूद होगी। अच्छा, अब बात आ रही है जमहूर सहाबा बताबे वाइम्मा मुज्तहिदीन, जमहूर सहाबा मेजोरिटी ऑफ सहाबा, अब बास ताबीन की बात नहीं हो रही, अब जमहूर साहब सहाबा व ताबीन और अइम्मा मुज्तहिदीन जो कि तबा ताबीन की जनरेशन में आते हैं और उनके बाद वाली जनरेशन में आते हैं, इमाम अबू हनीफा वगैरह, ठीक है, उन्होंने इस पर नजर फरमाई, यानी दे हैड अनदर लुक एट इट, ठीक है ना, दे हैड अनदर लुक एट इट मोर क्लोजली, ठीक है ना, एंड मोर इन डिटेल, कि अहले किताब के जाहिल अवाम जो गैरुल्लाह के नाम या बगैर अल्लाह के नाम के जबह करते हैं, ये इस्लामी हुक्म के तो खिलाफ है ही, ठीक है, इस्लामी हुक्म के खिलाफ है, जैसे कि सूरह बकरा और सूरह आले इनाम की आयात से साबित है ये, खुद नसारा के मौजूदा मजहब के भी खिलाफ, ठीक है, यानी नसारा का मजहब भी क्या है, अल्लाह के नाम पे जबह करना, चाहे वो गॉड के नाम से लिया जाए या अल्लाह के नाम से लिया जाए, किसी और नाम से लिया जाए, इसलिए उनके अमल का अहकाम पर कोई असर नहीं होना चाहिए, अहकाम नहीं तब्दील होंगे, इन जाहिल अवाम के अमल से अहकाम तब्दील नहीं हो सकते। उन्होंने ये फैसला दिया कि इन लोगों का जबीहा ताम अहले किताब में दाखिल ही नहीं, यानी कुरान मजीद में जो अहले किताब का जबीहा हलाल करा दिया ना सूरह माईदा की आयत नंबर 5 के अंदर, उसने ऐसा जबीहा जो कि कोई ईसाई जाहिल कर रहा है अपने नबी के नाम पर या खास करके नाम तर्क करके कर रहा है, वो ताम अहले किताब में दाखिल ही नहीं, इसलिए उसके हलाल होने की कोई वजह नहीं, और उनके गलत अमल की वजह से आयात कुरानी में नस्ख या तख़सीस का कौल इख्तियार करना किसी तरह भी सही नहीं। ठीक है, नस्ख का मतलब कि ये कहा जा रहा है कि सूरह बकरा और सूरह आले इमरान की वो जो आयात हैं कि अल्लाह का नाम के बगैर हलाल हराम हो जाता है, उसको आपने मनसूख कर दिया, ठीक है, ये गोया के आयत नंबर 5 सूरह माईदा ने उन आयात के हुक्म को मनसूख कर दिया, एब्रोगेट कर दिया, नहीं एब्रोगेट नहीं किया, ना एब्रोगेट किया और ना जो है वो उसमें से कोई एक्सेप्शन निकाली, तख़सीस करने का मतलब ये है कि उन आयात ने तो रूल बयान कर दिया था लेकिन सूरह माईदा की इस वाली आयत ने उस रूल में से एक एक्सेप्शन निकाली, वो एक्सेप्शन क्या निकाली, बास ताबेईन के नजदीक एक्सेप्शन क्या निकाली कि अगर वो ईसाई और यहूदी अपने आप को कहते हैं तो बेशक वो अल्लाह का नाम लेने के बजाय किसी दूसरे का भी नाम ले लें ना फिर भी वो जायज होगा, ये एक्सेप्शन निकालने का मजहब किनका है, बास ताबेईन, लेकिन मेजॉरिटी सहाबा व ताबईन व अइम्मा मुज्तहिदीन इनका मजहब क्या है कि नो देर इज नो एक्सेप्शन, देर इज नो एक्सेप्शन एंड देर इज नो एब्रोगेशन, ठीक है, तो उनके गलत अमल की वजह से आयत कुरानी में ना नस्ख माना जाएगा और ना तफसीस माना जाएगा, इसीलिए तमाम आइम्मा तफसीर इबन जरीर इबन कसीर अबू हयान वगैरह इस पर मुत्तफिक हैं कि सूरह बकरा और इनाम की आयात में कोई नस वाकई नहीं हुआ है, यही जमहूर सहाबा व ताबईन का मजहब है, जैसा कि बहवाला इबन कसीर ऊपर नकल हो चुका है और तफसीर बहर मुहीत में बल्फाज जेर मजकूर है, वो हजरत यहाँ पे इबन कसीर की जो है वो इबारत भी लिख दी कि जिसका तर्जुमा बनता है कि उनका मजहब यह है कि किताबी अगर जबीहे पर अल्लाह का नाम ना ले और अल्लाह के सिवा कोई नाम ले तो उसका खाना जायज नहीं है, यही कौल है अबू दरदा और उबादा इब्न सामित और सहाबा किराम की एक जमात रिजवानुल्लाह अजमईन का, और यही अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, इमाम जुफर और इमाम मालिक का मजहब है, नखई और सूरी इसके खाने को मकरूह करार देते, ठीक है, इमाम नखी और इमाम सूरी दुखानी मखलूक का मखलूक करार देते हैं, यानी हराम करार नहीं देते, लेकिन इमाम अबू हनीफा, इमाम यूसुफ और इमाम मालिक रहमतुल्लाह, यानी कम से कम दो मजाहिब का तो यहाँ पे अभी इतने एक्सप्लिसिटली जिक्र किया है। शाफी मजहब और हम्बली मजहब है उसका जिक्र यहाँ पे नहीं किया है, लेकिन इबारत से ऐसे लगता है कि वो भी इसी में मुत्तफिक हैं, या ये कि उनका जो है वो ज्यादा से ज्यादा मकरू का कौल है। तो अब जो है ना, अब हमारे लिए क्या है इसके अंदर, तो हमारे लिए इसके अंदर क्या गाइडलाइन मिलती है? नंबर वन, कि हम नबी अलैहिस्सलाम की सही हदीस की बुनियाद पर हम अहले सुन्ना वल जमात पे अमल करते हैं, यानी मेजोरिटी ओपिनियन के ऊपर अमल करते हैं। हम अहले सुन्ना वल जमात से अपने आप को कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि मेजोरिटी का जो ओपिनियन होता है ना, उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से सब गुमराह हो जाएंगे सिवाय एक जमात के। पूछा गया कौन सी वो जमात होगी, माँ वह जिसके बारे में फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने कि वो जमात होगी जिसके ऊपर, जो उस पर होगी जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं। ठीक है, तो सहाबा की जो स्पेशली अक्सरियत है ना, यहाँ पे तो बास ताबीन में तो सहाबा आती ही नहीं है, ताबीन को थोड़ी सहाबा होते हैं। तो सहाबा किसके ऊपर है? सहाबा तो इस वाले ओपिनियन पर है कि नहीं, उनका जो है वो जायज नहीं है। मुहकम आयत के साथ ही, मुहकम आयत से ये बात साबित है कि जी अल्लाह का नाम लेना जो है वो जरूरी, मा अना अलैहि व असहाबी, जज़ाकल्लाह। ठीक है, ये हदीस के अल्फाज हैं इस तरह, मा अना अलैहि व असहाबी, जिसके ऊपर मैं हूं और मेरे सहाबाए कराम। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई कि अहले सुन्ना वल जमात, ठीक है ना। और दूसरी बात ये हो गई कि चलो भाई, होता है ना भाई, जरा मैकडोनल्ड्स खाने का दिल चाह रहा है, KFC खाने का दिल चाह रहा है, ठीक है, और क्या जो है वो आप जो है वो फिश बर्गर खाते रहेंगे, अमेरिका जाकर के जो है वो फिश बर्गर खाते रहेंगे, या वेजिटेरियन खाते रहेंगे। ठीक है, तो चलो आज मैकडोनल्ड्स से जो है ना वो चिकन बर्गर खा लेते हैं, या जो है वो बीफ बर्गर खा लेते हैं। ठीक है ना, आखिर को बास ताबईन का तो कौल है ना आखिर को। ठीक है, तो हम आज जो है ना वो उनके फतवे पे अमल कर लेते हैं, बर्गर खाने का दिल चाह रहा है। तो अब क्या होगा ये आप बता दें, तो हम क्लास खत्म कर देते हैं, वैसे भी 5 मिनट एक्स्ट्रा होगा। आज जो है वो बर्गर खाने का दिल चाह रहा है और वेजिटेरियन और फिश बर्गर खा खा के जो है वो तंग आ गए हैं, तो चलो जो है ना बास ताबीन के कॉल के ऊपर अमल कर लेते हैं कि ये जो है ना जाहिल, अमेरिका में वैसे ही जाहिल ईसाई रहते हैं ज्यादातर, शिकागो और न्यूयॉर्क वगैरह, कैलिफोर्निया वगैरह के अंदर तो ऐसे ही रहते हैं ना, जाहिल ईसाई ज्यादा होते हैं, और मैकडोनल्ड्स के अंदर काम करने वाले भी ऐसे ही होते हैं, तो उन्होंने जो है वो अल्लाह का नाम नहीं लिया, लेकिन बास ताबीन के नजदीक तो जायज है क्योंकि वो अपने बड़ों के तहत कहलाए जाएंगे। तो फिर क्या होगा, ये आपसे सवाल है। पिटाई होगी, डायरेक्ट पिटाई हो जाएगी। पिटाई तो आखिर में आती है ना यार, अपने नफ्स की इत्तबा। पिछली क्लास ली थी आपने, हमें तो पिछली क्लास के अल्फाज में जवाब चाहिए, अपने नफ्स की इत्तबा। ठीक है ना, पिटाई भी सही जवाब है, नफ्स की इत्तबा भी सही जवाब है, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि आप पिछली क्लास के लेक्चर को याद रख करके उधर से भी जवाब दे देते। नहीं, जहालत तो नहीं कहा था, जहालत वाली बात तो जुम्मे के दर्स में हुई थी, हम पिछले पीर के दर्स की बात कर रहे। दिल पर दाग लगेगा गुनाह का, क्यों लगेगा भाई, बास ताबीन, ताबीन तो यानी उनमें से हैं, वो जो असलाफ में से हैं ताबीन, तो दिल पे दाग लगेगा, खाम खा में दाग लगेगा, हराम होगा, मुकल्लिद मुकल्लिद का कौल बिज्जत होता है। झूठा खुदा, एग्जैक्टली, झूठा खुदा, ये जो काम किया गया है ये झूठे खुदा की इत्तबा में किया गया है। ठीक है ना, ये थी पिछले क्लास की बात। ठीक है, झूठे खुदा की इत्तबा में ये वाला काम किया गया है, तो अगरचे के पीछे जो है ना वो बास ताबईन का कौल भी मौजूद है, लेकिन आप तो अहले सुन्ना वाल जमात हैं। ठीक है ना, तो आपने जो है वो इधर से अपनी मर्जी से जो इधर उधर जंप मारी है ना, उधर जो जंप मारी है ना, अहले सुन्ना वल जमात में से निकल करके एकदम से आप उधर चले गए हैं, तो ये क्यों गए हैं? ये तो नहीं था कि आपको जो है वो मौत आ रही थी, भूखे मर रहे थे, कुछ खाने को मौजूद नहीं था, नहीं खाने को भी मौजूद था, ठीक है, बल्कि अब तो खैर हलाल सर्टिफिकेशन वाले भी बेइंतहा वहां पे मौजूद हो गए, लेकिन चले आपसे आज से 25 साल पहले जब हम गए थे तो हमें तो नहीं मिलती थी ऐसी चीजें, हम तो खाली फिश बर्गर फिश भी नहीं खाते थे, बल्कि खाली जो है ना वो बुरीतो खाते थे, ठीक है। तो ये जो आप स्किप करके उधर जा रहे हैं ना, ये फिर झूठे खुदा की इत्तबा वाली, और झूठा खुदा जो है वो नफ्स होता है, और जब झूठे खुदा की इत्तबा में कोई ऐसा भी काम कर लिया जाए जो कि किसी ओपिनियन के मुताबिक जायज है, लेकिन आपने तो उसको झूठे खुदा की इत्तबा में किया है ना, तो इस वजह से दिल पे लगेगा दाग, और दाग जो होता है फिर उससे तौबा ना की जाए तो फिर वो दाग बढ़ता रहता है, दिल स्याह हो जाता है, रूहानी तौर पर जो है वो पहले बीमारी शुरू होती है, फिर बाद में जो है वो मौत की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है, और जाहिर है फिर इन सब के अंदर फिर पिटाई शिटाई भी शामिल हो जाती है, ठीक है। तो ये झूठे खुदा का जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया था ना, ये जरा तवज्जो से इसको समझ लें अगर अब तक नहीं पूरी तरह समझा है, क्योंकि इसके ऊपर फिर बहुत सारी चीजें डिपेंड, बल्कि हर चीज इस पर डिपेंड करती है, एक तरह से देखा जाए तो हर चीज इस पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। तारा बात की समझ उनकी तोफीक, अलहमदुल्ला।